여러분. 그것이 끝나는 하늘이 맡아서 지나 없었기 시작하니 아직도 신학이 자자자를 히티 지신이 앞섭신이 분기여자를 하다 그게 쉽게 말뜨기 바에 함석벌 리고 부지반 사람이지 말아주기 그 바에 이랑남 미라 후하이 저번에 희시시라디아이 말이 사드나 람남 적대기해 지바시 접시 건투시 접시 만시 접시 접시가스로 접대라시 접대 자른 걷대 위협디 부카르니 락자타해 브라마트마코 부카르니 기밭 접 부카르 시선투시티 밀디해 아난드 밀타해 तो फिर व्यक्ति स्मरण में प्रवेश कर जाता है, सिर्फ स्मरण करता है, पुकारने की जरूरत महसूस नहीं करता, उच्चारण तो पहले ही खत्म हो गया, उसके बाद बारी आई पुकारने की, अब पुकारने की भी जरूरत महसूस नहीं होती, अब सिर्फ याद करना है, ऐसी स्थिति को लाभ कीजिए। ऐसी स्थिति लाभ करने से राम नाम का जप स्मरण सतत नित्य निरंतर बना रहता है। इससे बढ़ के नाम की उपासना में बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। बिना प्रयास बिना याद दिलाए यदि आपका जप होता रहता है तो ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है नाम के उपासक के लिए। उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे परमात्मा दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, या कुछ और दृश्य दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते, ये कोई महत्व वाली बातें नहीं है, ये बहुत बड़प्पन वाली बातें नहीं है। जिसका जब अखंड सतत चलना शुरू हो जाता है, काम काज करते भी जब चलता है बिना याद दिलाए, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप जब चलता रहता है, ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। हमारी साधना में व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता, अपने आप इसमें अहम मर जाता है। कौन करवाता है? परमेश्वर करवाता है। हम करते हुए दिखाई देते हैं, करवाने वाला डर गया। तो इसके साथ ही साथ कितने सारे परिवर्तन जीवन में आते हैं, स्वतः आते हैं, मांगने नहीं पड़ते। यदि नहीं आए तो मांगो, लेकिन यदि करने वाली चीज शुरू हो जाती है, सतत स्मरण शुरू हो जाता है, तो ये सब बातें अपने आप आने शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले कर्तापन मरता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, परमात्मा सब कुछ तू करवाता है, तो जाप होता है, स्मरण होता है, तो कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर सब कुछ करवाने वाला है, तो अपनी उत्कृष्टता भी कोई नहीं रहती। मैं सुपीरियर हूं, जो वह करवाता है जैसा वह करवाता है वैसा होता है, तो अपने अंदर फिर सुपीरियरिटी अपने अंदर उत्कृष्टता किस बात की रह जाएगी। ये चीजें मरती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिएगा कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। आदमी इतना नम्र हो जाता है, इतना विनम्र हो जाता है, निरअभिमानी हो जाता है, ये सब बातें करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। प्रतीक्षा कीजिएगा, यदि ये नहीं हुई तो समझना चाहिए अभी साधना की और अधिक आवश्यकता है। ये अपने आप चीजें आ जाती हैं, किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं रहता, हर के प्रति हृदय में प्रेम उमड़ता है, हर के प्रति हृदय में सद्भावना उमड़ती है। ये बेचारा ये क्यों मोहम्मदता के जाल में फंसा हुआ है, परमेश्वर दया कर, तेरी दया से सब कुछ संभव है, इस प्रकार की बातें अपने आप हृदय से निकलती है। हमारी उपासना इस प्रकार की, ऐसी उपासना पर जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर सदगति मुक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, ये सब अपने आप पीछे पीछे आपके भागते हैं। मांगने की चीज तो ये है, ये होना चाहिए। मुक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं, सब प्रकार की मुक्तियां मोक्ष आपके पीछे पीछे घूमते हैं। कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? आप तो जीवन मुक्त हो गए हुए हो। जिसका अहम मर गया है वह जीवन मुक्त हो गया है, उसका कोई बंधन नहीं रहा, निर्बंध हो गया है, उसके सारे के सारे बंधन जितने भी हैं वे टूट गए हैं। ये उपलब्धि नाम की उपासना में हुआ करती है। ऐसी उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, बाकी तो सब उनका क्या स्थान होगा मुझे पता नहीं। आज सुबह शनाक में चर्चा चली थी, सतत स्मरण बना रहेगा तो जिस वक्त व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस वक्त भी जप होता रहता है, स्मरण होता रहता है। यदि ये नहीं होता तो क्या होता है? एक साधु का दृष्टांत दिया था, पुनः सुनिएगा उसे, उसके आगे चर्चा जारी रखेंगे। एक साधु थे, कुटिया में रहते थे, जिंदगी भर पैसे को हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। एक गांव का लड़का था, वह रोज रोटी लाके दे देता था, भिक्षा बोलते हैं ये लोग, भिक्षा लाके दे देता था, साधु खा लेता था। इस प्रकार से वर्ष सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम हो गया हुआ है, जिसकी कोई कामना नहीं रही, जो कामना शून्य हो गया है, वह तो अपने आप निर्बंध है। सारे बंधन तो कामना के कारण, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये जहां चाहिए आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही बंधन हो जाता है। ये कामना शून्यता आ जाती है, किसी प्रकार की कोई कामना हृदय में नहीं रहती। साधु ऐसा ही है, मानो किसी स्तर तक पहुंच गया हुआ है, बहुत कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं। बालक जो सेवा करता था बड़ा हो गया है, उसकी नौकरी लग गई है, अतएव जाना चाहता है। बाबा से कहता है, बाबा मुझे नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मुझे आपकी सेवा की चिंता है। पुत्र किसी प्रकार की चिंता ना कर, मेरी चिंता करने वाला बैठा हुआ है, जो आज तक मेरी चिंता करता था वो कल भी करेगा। तो निश्चिंत होके अपना काम काज करने के लिए जा। बालक को युवक को इस बात से संतुष्ट नहीं होती, अतएव कहता है, बाबा मेरा मन नहीं मानता, तेरा स्वभाव मांगने का नहीं, किस मिली ठीक है, किस ना मिली तो भी ठीक है, तो भूखे रहोगे। हो सकता है एक दिन दो दिन कुछ खाने को ना मिले तो क्या करोगे? ये सामने मैं गड्ढा खोद रहा हूं छोटा सा, उसमें 20 रुपये रखे, 20 रुपये, 20 रुपये रख रहा हूं, जरूरत पड़े तो इसको निकलवा लेना। बाबा ने बहुत मना किया, नहीं बेटा मुझे जरूरत नहीं है, आप मत जिद करो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, परमेश्वर मेरा सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी युवक पैसे रख दिया है वहां पर, चला गया है। पीछे से बाबा बीमार हो गए हैं, मृत्यु हो गए हैं। मृत्यु होने के बाद कहते हैं, जो भी कोई गांव का व्यक्ति कुटिया में मत्था टेकने के लिए बाबा को जाते, उन्हें बाबा की चलने की आवाज आती, खड़ाऊ चल रहा है, कुछ कहता नहीं है किसी को, तंग नहीं करता, कोई भयभीत नहीं करता। लेकिन लोगों को हुआ कि ये बाबा का भूत यहां पर घूम रहा है। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। आज कुछ अनिष्ट नहीं कर रहा, कल को अनिष्ट कर सकता है, प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, कुछ ना कुछ तो अनिष्ट से तो ये करेंगे ही करेंगे, अतएव लोगों ने जाना बंद कर दिया है। युवक को पता लगा है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, लौटा है, लौटने पर मत्था टेकने के लिए गया है, उसे भी वही खड़ाऊ की आवाज, चलने की आवाज बाबा की आई। प्रश्न किया, बाबा आप तो इतने पहुंचे हुए थे, क्या हो गया? ऋग्वेद योनि तो सर्गम हात्माओं को तो नहीं मिलती, वो तो जिनको कर्म अच्छे नहीं होते, कुकर्मी होते हैं, उनको ऐसी जो घृणित कर्म करते हैं उनको भूतप्रेत की योनियां मिला करती हैं, दुरात्मा की योनि मिला करती है या निमन योनियां मिला करती हैं। आप तो बहुत पहुंचे हुए हो, आपने तो ऐसा कभी कोई कुकर्म नहीं किया, ऐसा क्यों? कहा बेटा, मरते वक्त मेरी दृष्टि जो तुमने 20 रुपये रखे थे उन पर चली गई थी, उसी के कारण मेरे मुझे भूत की योनि मिल गया। उस पैसे को निकाल, बाबा ढंग बता रहे हैं, उस पैसे को निकाल, किसी अच्छे कर्म के लिए प्रयोग कर, पूर्ण कर्म के लिए प्रयोग कर, दान दे किसी गरीब किसी जरूरतमंद को, ये पैसे दे तो मेरी सदगति होगी। यदि राम राम का जप बेटा सतत समर्पित किसके करना है, किसकी पढ़ाई करनी है ताकि पास हो सके, ये पास होने जैसी बात है। सारा वर्ष आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, किस लिए? इसलिए ना कि जो कक्षा में हमने परीक्षा देनी है उस पास हो सके, ये जीवन की परीक्षा। जिंदगी भर जब किसके कहा जाता है, इसलिए ताकि हम अंत समय परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस दिन को त्यागें। और गीता जी फरमाती है, जो पार्थ अंत समय मेरा स्मरण करता है और देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इस महात्मा की बदकिस्मती, जिंदगी भर तो जाप किया लेकिन उस वक्त जब जाप करने की आवश्यकता थी, जिस वक्त अभ्यास के अनुसार जाप होना चाहिए था, स्मरण होना चाहिए था, वह हुआ नहीं। वह सुरति जिसे कहा जाता है, वह सुरति पैसे में चली जाए। हमारी सुरति देखो साधक जनों, तनिक सोचना, आज घरों में जाके हमारी सुरति कहाँ टिकी रहती है? हमारी 24 घंटों सुरति इन्हीं चीजों में टिकी रहती है, हमारी दुर्दशा क्या होगी? फिर भी हम जाप तो करते हैं, जाप तो हो रहा है, ध्यान में भी बैठते हैं, अमृतवाणी का पाठ भी करते हैं, उसके बाद भी ये दुर्गति हो तो ये शोभा नहीं देखा, मानो कहीं ना कहीं बहुत कमी है। निश्चित परमात्मा का विधान जीवन में दुर्गुण आते हैं, होते हैं, उनसे दुष्कर्म होते हैं, दुर्गुणों से प्रेरित कर्म दुष्कर्म, सद्गुणों से प्रेरित कर्म सत्कर्म, और सत्कर्मों से सदगति होती है और दुष्कर्मों से दुर्गति होती है, 16वां अध्याय बहुत स्पष्ट कहता है। गीता जी का 16वां अध्याय बहुत स्पष्ट इस चीज को दर्शाता है। राम राम जपते हुए सद्गुण हमारे अंदर आने चाहिए, दुर्गुणों की सड़ांद नहीं रहनी चाहिए, ये धोखा देगी, ये कोई ना कोई कमजोरी बाबा की उसके अंदर बची रही जिसके कारण ऐसा हुआ, अंत समय में उसे उसकी सुरती बाबा की पैसे में चली गई, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि ऐसा होता। तो कहीं ना कहीं कोई दुर्गुण, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जो है वह गंदी नाली की दराज में फंसी पड़ी है। वह कमजोरी यदि अंत समय आड़े आ जाती है तो वह दुर्गति करके रहेगी। आज एक व्यक्ति के पिताश्री की मृत्यु हो गई है, बहुत प्यार था, किसी संत महात्मा के पास गए, पहुंचे हुए संत थे, जाके कहा बाबा मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मैं बहुत प्यार करता था उनसे, मैं भूल नहीं पा रहा, मैं आप जी के पास आया हूं, मेहरबानी करके मैं दुखी क्यों हूं, कंसर्न मेरा क्या है, आपके पास क्यों आया हूं? इसलिए मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए हो, बहुत करने वाले हो, मुझे पता नहीं मेरे पिता की सदगति हुई है या दुर्गति, जो भी हुआ है मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता की सदगति करवा दीजिएगा। बाबा समझाते हैं, बेटा जो जन्मा है वह मर के रहेगा, बर्थ इंग्लिश में कहते हैं, बर्थ गारंटीज डेथ, जन्मे हो मानो अब डेथ की गारंटी डेथ होके रहेगी, जो आया है वे जाके रहेगा। इस संसार का लॉ है, प्रकृति का नियम है, जन्मा है वो मरेगा। अच्छे ढंग से समझाते हैं बाबा, लेकिन वह बालक इस वक्त इतना इमोशनल हुआ हुआ है, वह समझ नहीं पाता इसको कैसे समझाया जाए। सदगति या दुर्गति अपने ही कर्मों पर निर्भर करती है। इसमें संतों महात्मा में ये हमारी धारणा भी बड़ी गलत है, गुरु महाराज हमारी सदगति करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। स्वामी जी महाराज इस बात की पुष्टि नहीं करते। अतएव स्वामी जी महाराज हमेशा अपने आप को मार्गदर्शक कहा करते थे, हम राह दिखाने वाले हैं। सत्कर्म या दुष्कर्म करने वाले आप हो, हम तो यही कहते हैं। सत्कर्मों से भाई सदगति होगी, अतएव सत्कर्म का मार्ग सन्मार्ग अपनाओ। दुष्कर्मों का मार्ग आपको दुर्गति देगा, अतएव उसका त्याग करो। ये भी समझाने वाला कोई चाहिए वही होगा। ये कोई कम कृपा नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आपको कोई राह दिखाने वाला है, आपको कोई सन्मार्ग पर चलाने वाला है, वह स्वामी जी महाराज। बाबा भी इस युवक को समझा रहे हैं, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना था सब हो गया। यदि उसने सत्कर्म किए हुए हैं तो उसकी सदगति हुई है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि उसने दुष्कर्म किए हैं तो उसकी दुर्गति हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं करते। मानो तीर हाथ से निकल चुका हुआ है, तीर एक बार छूट गया तो वह कहीं ना कहीं जाके लगेगा ही लगेगा। हाँ, तीर छूटने से पहले यदि तू तेरे पास आया होता, तेरे पिता को मैंने समझाया होता, बुझाया होता, भाई राम राम जप, राम राम जपने से तेरे अंदर सदगुण आएंगे, सदगुण आएंगे तो उनसे प्रेरित होकर तेरे कर्म भी अच्छे होंगे। तो बेईमानी छोड़ देगा, चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा, इत्यादि इत्यादि। उस वक्त जो है वह कुछ किया जा सकता था, अब तो तीर हाथ से छूट चुका हुआ है, कुछ नहीं किया जा सकता। युवक जब नहीं समझता और आग्रह करता है तो उसे समझाने के लिए बाबा कहते हैं, बेटा दो छोटे मटके लेके आओ, एक में देसी घी, दूसरे में पत्थर डालो, दोनों मटके मेरे पास लेके आओ। नदी के किनारे ले गए दोनों मटकों के साथ, कहा जोर से नदी में फेंक। इन दोनों मटकों को मटके फूट गए, फूटने से पत्थर जो थे वो नीचे बैठ गए सारे के सारे, और घी ऊपर तैरने लग गया। देख क्या रहे हो, बाबा ने कहा, ये पत्थर जो नीचे डूब गए हुए हैं इन्हें ऊपर ऊपर लाओ, ऊपर तैराओ इनको। कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो, ये तो नीचे डूबे हुए हैं, भारी है, इन्हें मैं ऊपर कैसे तैरा सकता हूं। चलो वो नहीं कर सकते तो घी जो ऊपर तैर रहा है इसे डुबो दो, इसे नीचे कर दो। बाबा ये हल्का है, ये नीचे नहीं डुबाया जा सकता। अब बाबा समझाते हैं, बेटा यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, यदि तेरे पिता के दुष्कर्मों से जीवन भारी रहा है तो वह पत्थर की तरह है, तो नीचे बैठ के रहेगा। यदि तेरे पिताश्री ने सत्कर्म करके अपने जीवन को हल्का कर लिया हुआ है, निर्भार कर लिया हुआ है, तो वह ऊपर तैरेगा, उसकी सदगति होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर का विधान है। छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, जीवन दृष्टांत के माध्यम से बाबा ने कितनी बड़ी बात समझा दी। दुष्कर्म हमारे जीवन में बोझ भारापन देते हैं, आदमी डूब जाता है। सत्कर्म हल्कापन देते हैं, निर्भर कर देते हैं बेटा, और हल्की चीज तैरेगी उसे सदगति कहा जाता है। नाम की उपासना भक्तजनों, मैं छोटा हूं, अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं, आध्यात्मिक विद्या जानता नहीं, थोड़े से अनुभव से जो कुछ राम जी महाराज की कृपा से सीख पाया उससे यही कहूंगा, नाम की उपासना और क्या क्या देती है वह स्वामी जी जाने, शास्त्र जाने। लेकिन नाम की उपासना यदि आपको इंसान नहीं बनाती तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना में अभी बहुत त्रुटि है। और कुछ बनाए ना बनाए, और कुछ करे ना करे, ये मानव को मानव जरूर बनाती है, पशु जैसे कर्म करने से रोकती है ये उपासना। देखिए सचिन, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मेहरबानी करके इस प्रकार से उपासना करो, इस प्रकार से उपासना करो, सपनों में भी विश्रीना सतत नित्य निरंतर परमेश्वर का स्मरण बना रहे। नाम स्मरण, नाम जप इसलिए ताकि जिसका नाम जप रहे हो उसका स्मरण भी होता रहे। इस वक्त हमारी दशा बड़ी गंभीर है, जिसका नाम जपते हो उसकी याद नहीं आती, याद संसार की आती है, संसार को याद करते हैं, इसलिए उपासना में बहुत त्रुटि है। अभ्यास परमात्मा को याद करने का बेटा नहीं बना हुआ, क्यों? उससे प्रीति नहीं है। हमारी प्रीति बदलती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन है संसार से। जब तक परमात्मा से नहीं होती तब तक जो उपलब्धि आज आपकी सेवा में रखी है सदचनों ये संभव नहीं है। मैं झूठे दिलासे नहीं दे रहा आपको, सत्य दे रहा हूं। अपनी प्रीति की दिशा तत्काल मोड़िएगा, अन्यथा इतना सब कुछ करने के बावजूद वह उपलब्ध नहीं होगा। नाम को दोष मत दीजिएगा, गुरुओं को दोष मत दीजिएगा, उपासना को दोष मत दीजिएगा। स्पर्प है, तीनों की तीनों चीजें स्पर्प है, कोई मुकाबला नहीं है। गलती है तो हमारी उपासना में, हम जिसका नाम जपते हैं उसको याद नहीं करते, याद संसार को करते। नाम की उपासना से चाहिए कि हमें वही संसार चाहिए, संसारिक वस्तुएं चाहिए, संसारिक व्यक्ति चाहिए, संसार चाहिए परमात्मा ने। शुभ कामनाएं भक्तों, मंगल कामनाएं। एक दफा तो यहां से निकलने से पहले संकल्प लेके जाओ, कोशिश करेंगे, मत सोचिएगा ये आज करने से हो जाएगा, फिर झूठा दिलासा नहीं देता। इस जन्म में भी यदि ये उपलब्धि हो जाती है तो समझिएगा अपने बाजी मालिक। अनेक जन्म में भी हो जाए तो भी सौदा महंगा नहीं, डटे रहिएगा, चलते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एक बार तो दिव्य सज्जनों संकल्प लेके जाओ, क्या लेना है संसार से, क्या मिला है संसार से अब तक? दुख के सिवा, चिंता के सिवा, अशांति के सिवा और कुछ नहीं। क्यों? मेरे बंधु, इस संसार के पास इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संसार अपने आप घोषणा करता है, मेरे पास सुख है ही नहीं जो चाहिए, मेरे पास शांति है ही नहीं, मेरे पास परमानंद है ही नहीं, तो मैं दूं कहां से? व्यक्ति हुए परमात्मा के पास संकल्प लेके सब जाओ, यहां से उसी को याद करेंगे जिसके पास ये सब कुछ है जो इंसान